सबसे पहले आप देखिए मुत्तकीन की सिफात है, ये है गोल, ये है मतलूब पर्सनालिटी, जो इस कुरान को किसी भी रंग में पढ़ लीजिए एंड पे चाहिए ये। तो आयत नंबर एक तो हरूफ मुकत्तात में से है, उसका तो कुछ माना ना है, लिखिए बस वो कह लीजिए कि अल्लाह ताला की हिकमत है उसमें जो उसने रखी। लेकिन आयत नंबर 2 से 5 हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीन यूमिनून बिलगैबी व यकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लाते और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इनको अता फरमाया है इसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हुई और जो किताबें आपसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान लाते और आखरत का यकीन रखते हैं। गोया के मुत्तकी कौन है? गैब पर ईमान लाने वाला, नमाज का क्याम करने वाला, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला। ये तो देखिए इनफिरादी चीज़ें, इन तीन के आगे लिख लीजिए इनफिरादी किरदार। और उसके बाद तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना, ये है एक इज्तमाही काम, इतना खुले दिल का है कि अपने से पहली किताबों को भी मानता है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की भी दलील है। ये नहीं कहा कि वमा उन्ज़िला मिन बादिक, आपसे पहले की किताब है यानी ये कुरान आखिरी किताब, और फिर आखरत की पेशी पे गहरा यकीन। हकीकत यह है कि जिसके दिल दिमाग इरादों पे आखरत चली जाती है, जिसका इल्म आखरत फ़िक्र आखरत तक पहुँचता है यकीन आखरत से गुजरते हुए, उसकी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आती है। आज हम में से बहुत सारे लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन अमल उसकी गवाही नहीं देता, फ़िक्र नहीं लगी हुई, छोटी छोटी फ़िक्रों में ज़िंदगी गुजर रही है बस। हाय बच्चे क्या करेंगे, हाय बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी शादियाँ, इनकी दावतें, इनके रिश्ते, हाय घर, हाय छोटा, कभी दिल पे हाथ रख कर बैठें और पूछिए वबिल आखिरत हुम यूक़िनून में मेरा शुमार है? तो पहला नुक्ता अपने लिए, पहली गाइडलाइन इस सफ़र में से अपने लिए लीजिए कि दुआ करें कि अल्लाह आखरत का गम लग जाए, दुनिया की फ़िक्रों को अल्लाह आखरत की फ़िक्र में डाल दें, दुनिया तो गुजर जाएगी। फिर दूसरा बहुत ही खूबसूरत पैगाम इस सूरत का है आयत नंबर 21 में, इबादत का मुतालबा, या अय्युहन्ना सोबुदू रब्बकुम, लोगों अपने रब की इबादत करो। यही बात थी या कनाबुदू व या कनस्तईन में, और यही बात इधर आ गई, क्या पता चला कि मकसद ज़िंदगी इबादत है। सूरत ज़ारियात 56 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। फिर इसी तरह अब्द के मानी गुलाम है, अपने आप को अल्लाह के सामने एक गुलाम की कैफियत में रख पेश करें अपने आप को, फिर पूरे ज़ौक़ो शौक़ और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह की इताअत है। नो इफ्स नो बट्स नो क्वेश्चंस, ये क्यूए सेशन नहीं है, ये फ़र्ज सुन्नत नफिल का फ़र्क मालूम करना नहीं है, इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन का नमूना बनना। फिर तीसरा बड़ा पैगाम इस सूरत का आपके मेरे नाम, गुमराही फासिकों के लिए, यानी सवाल पूछने वाले, इताअत के मौके पे सवाल जवाब करने वाले, समेना के बाद अतवाना की बजाय सही ना कहने वालों के नसीब में सिर्फ गुमराही है, और गुमराही होती फासिकों पे जिनको गुनाह करते हुए शर्म भी ना आए। ये मज़मून आप आयत 26 से 27 में देखते हैं, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह गुमराह भी करता तो नाफरमानों ही को है जो अल्लाह के अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ डालते हैं, और जिस चीज़ यानी कराबत के रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया गया इसको क़ता करते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। तो यहाँ फासिक की तारीफ ले लीजिए, फासिक वो हैं जो अल्लाह ताला के साथ किए हुए अहद को तोड़ते हैं यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर और इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का जो अहद है इसको तोड़ देते हैं। इसी तरह कराबतदारों और नेक लोगों के साथ ताल्लुक ही नहीं कायम रखते, दूर से भाग जाते हैं, वो मौलवी साहब आ रहे पीछे हो जाओ, ऐसे लोगों से ये एलर्जिक होते हैं और खुलेआम अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, न्यूडिटी फैलाएं, गंदगी फैलाएं, गंदी फिल्में बनाएं, कुछ भी करें इनको कुछ शर्म नहीं आती, अपना जिस्म खोल खोल कर दिखाएं। चौथा पैगाम इस सूरत का लीजिएगा आयत नंबर 30 में कि इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला की दी हुई जिम्मेदारी यानी खिलाफत से फ़ायदा उठाता है। खिलाफत क्या है असल में, कि इस दुनिया में अल्लाह के पैगाम को राइज करने वाला। आयत 30 में आता है, वइस काल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। यहाँ क्या पता चला? हज़रत आदम की खिलाफत अर्जी का ऐलान है और फजीलत की बुनियाद इल्म को करार दिया। वल्लमा आदम अलस्मा कुल्लाहा। तो इसमें आपके मेरे लिए पैगामे कुरान क्या है? किस दुनिया में रहते हुए खिलाफत की जिम्मेदारियां अदा कीजिए। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके दीन को मुंतकिल कीजिए, और अल्लाह ताला इस ज़मीन पे जो अपने दीन को नाफिज करना चाहता है, आप इसमें अपना हिस्सा डाल दीजिए। अगला पैगाम लीजिएगा सूरत अल बकरा का, इल्मे वही की अहमियत। आयत 38 है, फ़ैमयातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिय हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो इसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की इनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। ये है उस पिछली बात का जवाब कि जब अल्लाह ताला की तरफ से इल्मे वही आ जाता है तो इंसान की ज़िंदगी ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून का मजमुआ बनती है। आदम को दुनियावी इल्म दिए गए तो खिलाफत मिल गई। ये इल्मे वही के बाद इमामत मिलेगी, ये हम आगे देखेंगे। और असल इल्म इल्म हिदायत है। अगर हम अपनी औलादों को ये इल्म नहीं दे रहे तो चाहे वो PhDयां कर लें और दुनिया का कोई भी ओहदा पा लें, खतरे में है। और खौफ और गम से आज इंसानियत तड़प रही है, उससे निजात इल्मे वही के आम करने में। अल्लाह ताला आपको मुझे इसका हिस्सा बना ले। एक और पैगाम बनी इसराइल को दावत, आयत 41 में, और जो किताब मैंने अपने रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब यानी तौरात की तस्दीक करती है, इस पर ईमान लाओ और इसके अव्वल इनकार करने वाले न बनो। यानी अगर मदीना वाले मान जाते तो आज दुनिया का नक्शा मुख्तलिफ होता, और मेरी आयतों में तहरीफ करके इनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी फवायद हासिल ना करो। तो बनी इसराइल को तो दावत दी अल्लाह के नबी पर ईमान लाने की, लेकिन उन्होंने दुनिया के हकीर मुफादात के इवज अल्लाह ताला की आयात को बेच दिया। हालांकि हुक्म क्या था, ला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला। आपके लिए मेरे लिए इसमें पैगाम क्या है कि दीनदारी को दुकानदारी ना बनाइए, दुनियावी मकासद के लिए ये काम ना कीजिए। और फिर एक और पैगाम के निजात के झूठे सहारों की नफी, आयत 48, वत्तकू यौमल्ला तजजी नफ्सुन नफ्सिन शैया वला युक्बलु मिन्हा शफाअतुन वला युखज़ु मिन्हा अदलुम वला हुम युनसरून। और इस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा और न किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और न किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सकेंगे। अकीदे आखरत की मुमकिना गलत फहमियाँ इस एक आयत में आ गई। तो बेअमली और झूठे सहारों की ज़ोरदार नफ़ी है। झूठी सिफारिश, ताल्लुकात, माल और फिदिया काम नहीं आएगा। तो करना क्या है? छठा पैगाम है ये। आप नोट कर रहे हैं कितने खूबसूरत पैगाम मिल रहे हैं आपको इस पैगामे कुरान में। ये सिर्फ जेम्स हैं, ये आपके मेरे लिए वो चीज़ें। अगर पूरे पारे में कुछ ना याद रहे तो ये चीज़ें याद रह गई तो इंशाल्लाह काम आ जाएगा। एक और पैगाम लीजिए, आयत 61 में, जिल्लत की वजूहात। आज लोग कहते हैं मुसलमान जलील क्यों हैं, उनकी इज्जत क्यों नहीं? अल्लाह का कलाम आपको पैगाम देता है, वदुरीबत अलैहिम अज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। और आखिरकार जिल्लत और रुसवाई और मोहताजी इन पर मुसल्लत कर दी गई और वह अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वह अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और इसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी ये इसलिए कि नाफरमानी करते और हद से बढ़ जाते थे। तो पैगाम क्या है इस आयत का कि अल्लाह के गज़ब और दरदर की ठोकरें खाने की जिल्लत का अजाब कब मिलता है? जब अल्लाह की नाफरमानी हो, अम्बिया का नाहक कत्ल हो और दूसरी ज्यादतियाँ हों। क्या जुम्मते मुस्लिमा इसकी तस्वीर तो नहीं? अफतू मैनू नबी बाद दिल किताबी व तकफुरू नबी बाद। अधूरी इतात का फितना जब आ जाता है तो जिल्लत दुनिया में भी मुकद्दर बनती, आखरत में तो न जाने क्या होगा। तो नेक्स्ट पैगाम लीजिएगा, आयत 80, निजात के लिए तमन्नाएं ही काफ़ी नहीं। वकालू लन तमस्सनन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा। और कहते हैं कि दोजख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी। खुश फहमियों की जन्नत, निजात के लिए महज दावे काफी नहीं। सस्ती निजात के नुस्खे, खुद साख्ता खुद फरेबियाँ आज उम्मत में भी हैं। काम करने का करना नहीं, और खुश फहमियों की जन्नत में रहते हैं। और अगला पैगाम आयत 83, हकुकुल्ला और हकुकुल इबाद को पूरा करो। ला ताबुदू न इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि एहसाना। اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. کیا پتہ چلا دین کی ترتیب, عشرہ احکام عشرہ, 10 کمانڈمنٹس, مال اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بات شروع ہوئی, پھر نماز اور زکوٰۃ, اسی طرح انسانی معاملات میں والدین, پھر رشتہ دار اور محتاجوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اور بیچ میں اخلاق, خوش کلامی کی تلقین. یہ ہمارے دین کا پیغام, کوئی مشکل تھوڑی ہے ہمارا دین. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک اور پیغام کیا ہے, کہ رسوائی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تو آیت 85 اس کا جواب دیتی ہے, افتؤمنون بعباد الکتاب وتکفرون بعباد. کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں. تو بات یہ ہے, آیت 208 میں ایک مطالبہ ہے, پورے دین پر عمل کرو. اسی کی بات ہے اس میں کہ کیسے تم اس دین سے دور ہو. ادخلوا فی السلم کافہ کو چھوڑ کر رسوائی کو اپنا مقدر نہ بناؤ, اور دین پر جزوی عمل قابل قبول نہیں بلکہ لائق سزا. جیسے ادھورے نوٹ سے دودھ کا ایک ڈبہ نہیں آتا, اور اسی طرح سے کسی ملک میں رہتے ہوئے آدھا قانون مانے اور آدھا نہ مانے تو بھی سزا ملے گی. تو ہماری بھی ذلت کی بنیادی وجہ دین پر جزوی عمل ہے. اور پھر اس کے بعد جانے کی تیاریاں, موت کی تیاری کر لو, اس بارے کا یہ پیغام ہے. آیت 94, قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے, تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو. کہا نہیں کہ کرو, بلکہ کہا گیا کہ موت کی تیاریاں کرو. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جانچنے کا معیار, لکھیے خود سے, پوچھئے, موت کی تیاری. ہم بھی جائزہ لیں کیا موت کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور پیغام اس بارے کا, احترام نبوی, یعنی توہین رسالت کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیجئے. آیت 104, یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے اہل ایمان, گفتگو کے وقت کس سے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. راعینا نہ کہا کرو, انظر نہ کہا کرو, اور خوب توجہ سے سنو کہ دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے. کیوں ڈسٹریکشن کے ساتھ سنتے ہو بات کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا حکم ہے, اور ایسے الفاظ کے استعمال کی ممانعت کے جن سے بے ادبی کا امکان ہو. اور پھر ایک اور مطالبہ, ایک اور پیغام, تلاوت کا حق ادا کرو. آیت 121, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے, یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا, جب لفظ پڑھیں تو معنی بھی سمجھ میں آئیں, زبان کے ساتھ دل بھی چل رہا ہو اور دماغ بھی چل رہا ہو, یہ تلاوت ہے. ذرا غور کیجئے گا, صبح جو پارہ پڑھا وہ تلاوت تھی یا صرف ریڈنگ تھی؟ اور قرآن کی پیروی کرنے والے ہی دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو آپ نے میں نے اس کتاب کا حق ادا کرنا ہے. اور پھر ایک اور مطالبہ, مطالبے تو آپ دیکھیے انسان ہم سے بہت کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کے مطالبے کتنے خوبصورت ہیں. کیا پیغام؟ مرتے دم تک فرما برداری کا مطالبہ ہے. آیت 132, یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو, اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے, تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا, ادھوری تباہ نہیں. دعا کرو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو جائے. تو نیک والدین اولاد کو اللہ کی فرما برداری کی وصیت کرتے ہیں, مرتے دم تک اسلام پر کاربند رہنے کا مطالبہ ہے. اور پھر آنکھیں کھلتی ہیں آخری آیت پارے کی, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک بات کہہ کے خاموش کروا دیتا ہے, اور وہ کیا کہ ہر شخص خود جواب دے ہے. آیت نمبر 141, تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جماعت گزر چکی, ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا, اور تم کو وہ جو تم نے کیا, اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہ ہوگا تو پارے کا آخری پیغام کیا ہے کہ نجات کا انحصار نسلی تعلق پر نہیں بلکہ بندے کے عمل پر ہے. ہر شخص اپنا جواب دے خود ہے. سورۃ مریم 95 میں بھی ہم پڑھیں گے. تب دیکھیے آپ نے گنے کتنے پیغام ملے آپ کو اس بارے سے. سوال یہ کہ کیا واقعی یہ پیغام ہمیں اس وقت بھی ملتے ہیں جب ہم صرف تلاوت کرتے ہیں یا جس وقت قرآن خوانیوں میں اس بارے کو پڑھتے ہیں؟ نہیں ملے تو اب ملیں گے. چلیے جاتے جاتے کچھ اوامر لے جائیے اور نواہی, کیونکہ کسی کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کے بعد یا تو کچھ کرنا ہوتا ہے یا کچھ کسی چیز سے رکنا ہوتا ہے. اسی لیے کالز آتی ہیں نا, میسیجز کیوں آتے ہیں؟ یہ کر لیجیے, یہ چھوڑ دیجیے, اب آپ خوشی سے کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ نے کام لے لینا.